శాంతి. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. पहले तो आप सभी बाबा के अमूल्य रत्नों को दिल से बधाई देने की भावना उठ रही है, क्योंकि बहुत समय से सभी एक प्रकार के बंधन में बंधे हुए थे ना। सारी दुनिया को एक तरह से एक समान परिस्थितियों में बांध लेना, ये तो एक कमाल की बात हो गई, जिस कारण चाहते हुए भी बाबा के बच्चे मधुवन नहीं आ सकते थे। और आप सभी अब उस बंधनों को काट करके अपने में हिम्मत भर करके, साहस रख करके, निर्भय हो करके यहाँ पहुंच गए हैं, तो पहले तो आपको उसकी बहुत बहुत बधाई है। वास्तव में बाबा ने हमें रक्षा कवच भी दिया हुआ है और रक्षा सूत्र भी दिया हुआ है। रक्षा सूत्र क्या है? मैं आत्मा परमात्मा की याद में सदा सुरक्षित हूं। और रक्षा कवच क्या है? मैं आत्मा लाइट के आकारी कार्ब में हूं और मास्टर सर्वशक्तिवान। अगर ये स्मृति अच्छी तरह से रहे तो ये रक्षा सूत्र और रक्षा कवच हमारी रक्षा करता रहेगा। तकलीफ उन्हें होती है जो रिंचक भी संकल्प मात्र भयभीत होते हैं। क्या होगा? मेरे को तो नहीं हो जाएगा। बस इतना रिंचक भी भयभीत का संकल्प वो हमें शिकार बना सकता है, हमारी इम्यूनिटी डाउन कर सकता है। इसलिए बाबा ने जो हमें महामंत्र दिया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान बन के आए ही हो, लेकिन फिर भी हमेशा के लिए ये मंत्र को अपना मंत्र बना के ऐसे ही निर्भय होके चलते रहे, ठीक है? अपने लिए ताली बजाओ जोरदार। अच्छा, हमारी डॉक्टर सविता दीदी ने आज का विषय सुनाया, बेहद की वैराग्य वृत्ति। अब सबसे पहले तो ये वैराग्य है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैराग्य की शुरुआत तो सतयुग तेतर आधा द्वापर जाने के बाद वैराग्य की शुरुआत तो हो गई। वैराग्य आना वो शुरू हो गया, पर वैराग्य की पूरी परिभाषा क्या है ये किसी को मालूम नहीं है। देखो, एक तो जो मनुष्य जिम्मेवारी से डर जाता है, जिम्मेवारी नहीं निभा पाता है, तो बाबा कहते भगवे कपड़े पहन के निकल पड़ते हैं, संन्यास ले लिया। क्यों? तो कि जिम्मेवारी से भागना चाहती थी। तो ये है हद का संन्यास, घर बार छोड़ के जंगल में चले गए, कपड़े बदल लिए। फिर है स्मशानी वैराग्य। आपको मालूम है न कि मनुष्य मरता है तो स्मशान पर जाना ही पड़ता है उसको जलाने के लिए, और फिर वहां जब वो जलते हुए मुर्दे को देखते हैं तो वैराग्य आता है कि अरे क्या रखा है, एक दिन ऐसे ही हम भी चले जाएंगे। हाँ, आता है ना। पर वो वैराग्य कैसा? स्मशानी, स्मशान में है तब तक वैराग्य है, फिर आए तो जैसे के वैसे ही हो गए। फिर तीसरा वैराग्य है, बुद्ध को वैराग्य आया था। क्यों वैराग्य आया था मालूम है? मालूम है किसको कहानी? वो तो राजा का बेटा था, राजकुमार था, बड़े सुखों में पल रहा था। उनका पहले का नाम सिद्धार्थ था। क्यों वैराग्य आया? शहर में घूमने गया तो देखा कि लोग भीख मांग रहे हैं, दुखी हैं, और रास्ते जाते एक ननामी को देखा, मुर्दे को देखा, शमशान में ले जा रहे थे। पूछा ये क्या है? बोला ये शरीर छोड़ दिया है, अभी उसको जलाएंगे। तो वैराग्य आ गया कि इस संसार में रखा ही क्या है, कोई दुखी है, कोई भीख मांग रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई मर गया है जलाने ले जाते हैं, तो ये संसार असार है, ऐसा है उसको लगा। और असार संसार समझ करके उनको वैराग्य आया कि इसमें कुछ भी रखा हुआ नहीं। ये भी वैराग्य, ये वैराग्य की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। फिर आपको मालूम है स्वामी राम तीर्थ को भी वैराग्य आया। स्वामी राम तीर्थ को क्यों वैराग्य आया? क्यों आया, किस लिए वैराग्य आया? उनको वैराग्य आया मां काली की भक्ति करते करते, काली की साधना के लिए उनको वैराग्य आ गया। उनको भक्ति की साधना में सत्य दिखाई दिया और बाकी संसार असार दिखाई दिया, इसलिए उसने उसी साधना के लिए वैराग्य आया। विवेकानंद को भी वैराग्य आया, सन्यासी बना। क्यों वैराग्य आया? संसार का आखिरी सत्य क्या है उसकी समझने की उसके दिल में गहरी तमन्ना थी कि आखिर ये सब है क्या, भगवान क्या है, आत्मा क्या है, ये संसार क्या है, दुनिया का अंतिम सत्य क्या है। तो विवेकानंद को भी वैराग्य आया। लेकिन ये सभी वैराग्य हद के वैराग्य है, क्योंकि उसकी जो प्राप्ति है वो प्राप्ति का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। और वो कैसे प्राप्त होगी वो भी स्पष्ट नहीं है। तो ये है हद के वैराग्य सारे। एक ही ब्रह्मा बाबा ने बेहद के वैराग्य की डेफिनेशन को, व्याख्या को अपने जीवन में साकार किया। बेहद का वैराग्य, देखो ज्ञान में आते हैं ना, कभी कभी ज्ञान में चलने के बाद भी ऐसे वैरागी होते हैं जो वैराग्य के नाम को थोड़ा गड़बड़ी कर देते हैं। घर में नहीं बनेगी, संस्कार मिलन नहीं होगा, पति के तरफ से परीक्षाएं आएंगी, तो बस कहेंगे कि मेरे को तो अभी ये सब छोड़ के सेंटर पर रहने चले जाना है। आता है ना वैराग्य? नहीं आता है? आता है नहीं? अभी बाबा ने सब कुछ छोड़ करके वैराग्य लाने लिए कहा है? जो कहते हैं बाबा ने तो ऐसे ही कहा है कि सब कुछ छोड़ दो, इसका नाम वैराग्य। हाथ उठाओ, सब कुछ छोड़ दो, उसका नाम वैराग्य। हाथ उठाओ, देखो माताएं उठा रही हैं। माताएं उठा रही है। कल ही मेरे पर अहमदाबाद से फोन आया, तो कोई माता बड़ी जिद लेके बैठी है कि बस हमको तो धारणाओं में चलना है, हमको ज्ञान में चलना है, हमको ये करना है, हम सब कुछ छोड़ देंगे, हम नहीं रहेंगे पति के साथ, नहीं रहेंगे आदि आदि। तो मेरे को फोन आया कि बहन जी आप कहो तो हम लिख करके देते हैं कि ये हमारी पत्नी को आप जीवन भर संभालो और हम आपको छुट्टी देते हैं कि भले उनको समर्पित करो। समर्पित किया जाए, करना चाहिए, जो कहते कर देना चाहिए। हाथ उठाओ, देखो एक भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। क्यों भाई, बिचारी को इतनी लगन है और आप लोग कहते हो नहीं करना चाहिए, क्यों? क्या ठीक? साथ में है तो उससे समझ में आ गया ना कि उस माता ने ज्ञान को सही समझा नहीं है, ये उनका वैराग्य नहीं है, ये उनका भागेड़ु वृत्ति है। तो माताएं सुन लो, माताओं की संख्या आप सभी से बहुत ज्यादा है और माताओं को बहुत जल्दी वैराग्य आता है ना? आएगा ना भाई, पत्नी, इस कलयुग के बच्चे, ये घर गृहस्थी, इससे तो बहन जी अगर हमको आपकी तरह ब्रह्मा कुमारी बनने का मिल जाए ने तो बहुत अच्छा है। माताएं जिनको ऐसा बनने की इच्छा है हाथ उठाओ, तो देखो सारी सभा है। अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। अच्छा चलो, अभी हमें सच्चा वैराग्य धारण करना है। अभी अपनी बात पर आते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा बेहद के वैरागी बने, ऐसे वैरागी जो अंतिम श्वास तक पढ़ाई नहीं छोड़ी, आध्यात्मिक पुरुषार्थ नहीं छोड़ा, सेवा नहीं छोड़ी, यज्ञ नहीं छोड़ दिया, कितनी सारी जिम्मेवारियों के बीच रहते हुए भी ब्रह्मा बाबा बेहद के वैरागी थे। तो बाप दादा हम बच्चों को वैरागी बनने के लिए चार बातों से हमें नष्टो मोहा बनना है, चार बातों से हमें समझ सहित वैराग्य को धारण करना है। वैराग्य वो चीज है जिससे कुछ प्राप्ति नहीं है, जिसमें कुछ सार नहीं है, जो अज्ञानवश कर रहे हैं ऐसी प्रवृत्तियों को छोड़ करके ज्ञान के तीसरे नेत्र से श्रीमत को समझते हुए निश्चय बुद्धि बन करके बैलेंस में रह करके और ऊंचाइयों को पहुंचने के लिए डिटैच हो जाना, नष्टो मोहा हो जाना, उपराम हो जाना, ये है वैराग्य। कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, न घर छोड़ना है, न पति को छोड़ना है, न बच्चों को छोड़ना है, न नौकरी धंधा छोड़ना है, न ये शरीर छोड़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। सभी के बीच में रहते हुए, सब कुछ करते हुए बुद्धि को न्यारा कर देना, बुद्धि को डिटैच कर देना, बुद्धि को उपराम कर देना, बुद्धि को बाबा से जोड़ देना। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, इसी श्रेष्ठ वृत्ति में रह करके प्रवृत्ति करना, इनका नाम बेहद की वैराग्य वृत्ति। समझ में आ गया? बेहद की वैराग्य वृत्ति समझ में आया? आया समझ में तो हाथ उठाओ। क्या समझ में आया? हाथ ऊपर रखना, ऊपर रखना, मैं कहूं तो नीचे करना। क्या समझ में आया? बाबा को कहो, बाबा हमने अच्छी तरह समझा, घर गृहस्थ में रहते हुए, प्रवृत्तियों के बीच रहते हुए, संबंध संपर्क में रहते हुए, बुद्धि से न्यारा और एक आपका प्यारा रह करके साधना करनी है, तपस्या करनी है। ठीक है, अब देखो समझ आ जाएगी नहीं, फिर सहज हो जाएगा। हम भुट्टियां क्यों करते हैं? इस महीन रहस्यों को समझने के लिए अब मैं एक कहानी सुनाती हूं आपको, जिससे आपको वैराग्य क्या है वो एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। राजा जनक का नाम सुना है ना? राजा जनक को विदेही राजा कहते थे। अब राजा जनक को एक बार विचार आया कि मुझे जीवन मुक्ति पद प्राप्त करना है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी राजसभा बुलाई, ढिंढोरा पिटवाया कि राजा जनक को जीवन मुक्ति दिला सके ऐसे गुरु की चाहना है। ऐसा कोई गुरु चाहिए जो राजा जनक को जीवन मुक्ति दिलावे। राजा था, राजा ही में रहता था, सभा भरी, सभा में ये बात कही है। तो उसमें से एक व्यक्ति खड़ी हुई, वो जो व्यक्ति खड़ी हुई उसके आठों ही अंग टेढ़े थे, अष्टावक्र उसका नाम। अब वो आगे आया, वो कहा कि राजा जी मैं आपको जीवन मुक्ति दिला सकता। तो राजा ने साष्टांग प्रणाम करके स्वीकार किया और फिर उनको राजमहल में ले गए। वहां जाके वो रहे। दूसरे दिन राजा को बुला करके कहा कि राजा जी अब आप कहो कि ये मेरा तन मन धन सब कुछ आपका है, तन मन धन सब कुछ मुझे अर्पण कर दो, फिर मैं तुम्हें जीवन मुक्ति की विद्या सिखाऊं। दक्षिणा में तन मन धन सब कुछ। तो राजा जी ने कहा कि गुरु जी ये तन मन धन सब कुछ आपको समर्पण है, कह दिया। दूसरे दिन सुबह होते ही राजा जी को गुरु ने आदेश दिया कि अभी जंगल में शिकार करने चलना है। तो जैसे ही राजा जी को कहा, राजा जी ने घोड़े के पैंगड़े में पांव डाला जाने के लिए, घोड़ा को तैयार करने लिए। तो जैसा घोड़े के पैंगड़े में पांव डाला तो राजा जी को गुरु ने गाल में एक जोर से चमाट लगाई। चमाट बोलते हैं ना, हिंदी बोलने में थोड़ी तकलीफ हो जाती, चाटा लगाया। अब जब चाटा लगाया तो उसका हाथ यूं होने लगा, तो जोर से दूसरा चाटा लगाया। अब दूसरा चाटा लगाया, उसके समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है, वो सोच में पड़ गया। तो जैसा ही सोच में गया तीसरा चाटा लगाया। अब तो उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि चाटे पर चाटा लग रहा है। तो वो गुरुजी के चरणों में गिर गया, गुरुजी मेरी कहां भूल हो रही है आप बताइए मुझे। गुरुजी ने पूछा ये घोड़ा किसका है, बोला आपका गुरुजी। बोला किसको पूछ करके पांव डाला, फिर कहा ये गाल किसका है, बोला आपका गुरुजी। किसको पूछ करके हाथ लगाया, अच्छा फिर कहा ये मन किसका है, बोला आपका गुरुजी। तो किसको पूछ करके सोचना शुरू कर दिया, राजा गुरुजी के चरणों में साष्टांग होकर के कहा गुरुजी अब मुझे जीवन मुक्ति प्राप्त हो गई। हा? समझ में आया, कैसे जीवन मुक्ति मिली, कैसे मिली, सब कुछ समर्पित कर देने से। मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब गुरुजी आप हैं। अब मेरे से बुद्धि गई तो जीवन मुक्ति हो गई। समझ रहे हो माताएं, समझ में आ रहा है, अभी सच्ची बताओ क्या क्या समर्पण किया है शिव बाबा को। हाँ सच्ची बताओ, कभी सिर दर्द होता है तो ऐसे तो नहीं करते, हे भगवान क्या हो गया, ऐसे तो नहीं करते, अथवा कमर दर्द होती है तो ऐसे करते हो, बाप रे ये क्या हो गया, ऐसे तो नहीं करते, अभी नहीं करेंगे ना ऐसा। आपने शिव बाबा को तन दिया है, जिन्होंने तन दिया है हाथ उठाओ, सोच रहे हैं, सोच सोच करके हाथ उठा रहे। जिन्होंने शिव बाबा को तन नहीं दिया है वो हाथ उठा, जिन्होंने आधा आधा दिया है वो हाथ उठा। अभी आप सबको एकदम फट से बेहद का वैराग्य समझ में भी आ जाएगा, देखना। और समझ में तो आ जाएगा पर सचमुच जीवन में भी आ जाएगा, क्योंकि कोई भी बात पहले समझ में आनी चाहिए है? समझ में आने के बाद उसको स्वीकार करना चाहिए कि नहीं सही बात है, और मेरे को ये बात अभी समझ में आ गई है और अब तो मुझे ये करना ही है, बस फाइनल हो गया, अब तो मुझे ये करना ही है। देखो आप लोगों को कि बहुतों ने रोका होगा, ज्ञान में आते समय भी रोका होगा, ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाओ, सोच समझ करके जाओ, इतना जल्दी नहीं करो। जिनों को ऐसा रोकने वाले लोग मिले थे हाथ उठाओ तो देखो, 50% से भी ज्यादा लोगों को रोकने वाले मिले थे, आप फिर भी आ गए, इतनी बड़ी गलती कर दी। जो कहते सचमुच हम यहां आ तो गए, बहुत बड़ी गलती कर दी, हाथ उठाओ तो। नहीं, कोई ने गलती नहीं की है, क्यों? समझ करके आए हैं। अच्छा, अभी भी आप जब आ रहे थे तब भी काफी लोगों ने रोका होगा ना, कि अभी ये कोरोना का माहौल है और अभी जल्दी क्या है, अभी नहीं जाओ। जिनको रोका था हाथ उठाओ तो देखो, बहुतों को रोका था फिर भी आ गए। क्यों आ गए? समझ में आया कि नहीं ठीक है, हम समझ के कर रहे हैं, हम समझ के जा रहे हैं। तो अभी बेहद का वैराग्य जो बहुत ऊंची प्राप्ति कराने वाला है, वो हमें आज इस विजिट में, इस क्लास में संकल्प करके ही जाना है कि मैं बेहद की वैरागी आत्मा हूं, ठीक है ना? अच्छा, देखो बहुत ज्यादा बड़ा वैराग्य नहीं है, सबसे नंबर वन स्वयं के देह से वैराग्य। अब ये जो देह है उससे वैराग्य लाने के लिए आप क्या करो? स्मशान में जाओ और दो चार जलती हुई डेड बॉडी को रोज देखो और साथ में अपने आप को भी देख लो। हमारी भी निकली है सवारी और हमारे पीछे भी राम बोलो भाई राम हो रहा है, और ये हमारी अर्थी को अग्नि पर रखी जा रही है और जल रही है, जल गई। देह भान को, देह अभिमान को, देह अहंकार को जलाना है। देह जले न जले, देह विनाशी है, वो अपने को समझ में आ जाना चाहिए। और मैं आत्मा हूं ये याद रहना चाहिए। देखो आत्मा निकल गई ये तो सेकंड में खत्म, तो हमको क्यों समझ में नहीं आता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं? हाँ, इतना आत्मा और शरीर को 5000 साल से इतना साथ साथ रहने की आदत है जो एक सेकंड भी नहीं छोड़ सकते हैं, एक श्वास भी नहीं छोड़ सकते। और मैं मेरे में तो बुद्धि ऐसी अटकी हुई है कि ये मेरा भूलता नहीं है, सही बात है ना? तो ये स्वयं के देह भान से वैराग्य ले आना है, रहते हुए रहना इसी में है। इसमें रहते हुए ये अनुभव हो कि मैं परम धाम की रहने वाली हूं, मैं भगवान के दिल तख्त पर रहने वाली हूं, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो वैराग्य लाने के लिए तीन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ब्रह्मा बाबा ने की, नंबर वन मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा रथ है, मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरी मोटर कार है, मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा मंदिर है, मैं चैतन्य मूर्ति हूं, ये शरीर मेरी मंदिर है, मैं चैतन्य योगी हूं, ये शरीर मेरी गुफा है। तो सारा दिन स्वयं को ये अभ्यास में रखना है कि अलग हो, मैं आत्मा अलग हो, ये शरीर अलग है। ये हो सकता है, ये बुद्धि में याद रखना पॉसिबल है। जिन्होंने ऐसी प्रैक्टिस की है वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। उस प्रैक्टिस के फल स्वरूप शरीर से डिटैच होने का अनुभव किया है वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। जो समझते हैं कि ये देह से डिटैच होने से ही हम विदेही स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, उसके बिना नहीं हो सकता है, वो हाथ उठाएं। तो देह से वैराग्य नष्टो मोहा बनना है और स्वयं को एक दिव्य प्रकाश पुंज समझना है, ये पहला वैराग्य। अब इसी देह भान से परे होने के लिए अपने को क्या सावधानी रखनी है? हमको आदत पड़ी हुई है, हमारी दृष्टि चली जाती है औरों के देह की तरफ। ये मोटी है, ये पतली है, ये काला है, ये गोरा है, ये कुरूप है, ये गुणवान है, ऐसे ऐसे जो आंखें देखते ही दूसरों के शरीरों को पर चली जाती है। तो वहां क्या प्रैक्टिस करनी है? क्या करनी है? आत्मा है। बाबा ने ये किया, जशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, एक एक का नाम लिख करके बाबा ने प्रैक्टिस किया। आप में से जिन्होंने प्रैक्टिस की हो, अपने परिवार के भाई बहनों का नाम लिख करके, स्वजनों का नाम लिख करके कि ये आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, जिन्होंने किया हो हाथ उठाएं। देखो 5-7 ने उठाया, माताओं ने, भाइयों में 2-3-4 ने उठाया। बस अब ये तो हमारा अभ्यास है, ये नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं होंगी। मैं सच बताती हूँ, लिखो दिन में 2-4-5 बार लिखो। जिन लोगों के संपर्क में आना पड़ता है उनको देखो भी ऐसे और लिखो भी कि ये फलाना भाई आत्मा है, ये फलानी बहन आत्मा है, ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, ये बहुत गुणवान आत्मा है। उनको आत्मा देखो, तो स्वयं के देह भान से भी परे, दूसरों के देह भान से भी परे। क्योंकि हमें दूसरों का प्रभाव भी खींचता है ना, देह के देहधारियों का प्रभाव खींचता है। कैसे खींचता है? कोई गुस्सा करेगा, हमको गुस्सा आया, खींचा ने। कोई ने मोह दिखाया, हम फंस गए, खींचा ने। तो देह के भान से फिर देह का अहंकार, मैं समझदार हूं, मैं सुंदर हूं, मैं पढ़ी लिखी हूं, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मेरी कंपनी बहुत अच्छा है, मेरा पे बहुत अच्छा है, मेरी डिग्री बहुत ऊंची है, पर ये सब किसका है? देह का अभिमान। अहंकार, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों के बीच मेरी प्रेजेंस का महसूस होना चाहिए, मेरा ईगो सेटिस्फाइड होना चाहिए। नहीं होगा, एकदम हर्ट हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। देखा, मुझे किसी ने बुलाया नहीं, हमारी कीमत नहीं, हम नहीं जाएंगे, देख लेंगे, हम भी दिखा देंगे। ये सब क्या होता है? ईगो, देह, अहंकार। तो देह से नष्टो मोहा बनना है, और अगर हम देह से नष्टो मोहा बनेंगे तो मैं एक शुद्ध पवित्र पावन आत्मा हूं, विदेही आत्मा हूं, ये अंदर में स्पष्ट महसूसता होगी। तो पहला किससे नष्टो मोहा बनना है? देह से। दूसरा, देह के संबंधों से, मामा, चाचा, भाई, बहन, मित्र, सखा, बॉस, कितने सारे संबंध हैं, उन सब संबंधों के बीच रहते हुए कमल पुष्प समान रहना है। पिछले कर्मों के हिसाब किताब को काटना है और नया बिल्कुल जोड़ना नहीं है। अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, वो ये अलग अलग संबंध के रूप में बंधा हुआ है। अब उसको काटने की एक ही रस्सी है, ये रस्सियों को काटने का एक ही तलवार है। कौन सी तलवार? बाबा कहते योग, याद की यात्रा में क्या चाहिए? जौहर चाहिए, योग का जौहर चाहिए। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। ज्ञान ये है कि ये देह सही देह के सारे संबंध विनाशी है। विनाशी को विनाशी की दृष्टि से देखना। अच्छा, पर हमें जिम्मेवारियों को छोड़ना नहीं है, सन्यासी बनना नहीं है, भाग जाना नहीं है, तो क्या उसका सरल तरीका? जो ब्रह्मा बाबा किया, बाबा ने सारे संबंधों सहित समर्पण हो गया है ना। तो बस बाबा को कह दो कि बाबा ये सब तेरे हैं, माँ तेरी, बाप तेरा, भाई तेरा, मित्र तेरा, ये सब तेरे हवाले हैं। हम बुद्धि से अर्पण कर दे कि अब मेरा रोल पूरा हुआ, अब मेरा देहधारियों के साथ आत्मिक दृष्टि का रोल है और ये सारे संबंध भगवान को समर्पण किया, भगवान उसका कल्याण करे बस। न मोह हो, न नफरत हो, न पकड़ के रखना है, न छोड़ देना है, बैलेंस। और भी आप अपने देह के संबंधियों का कल्याण कर सकेंगे नष्टो मोहा बनने से। देखो, अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर अपने पत्नी बच्चे परिवार का मोहवश ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे, सारा संसार का भले कर लेंगे। क्यों? मोह है वहां, कुछ हो जाएगा तो। लेकिन दूसरों के लिए वो डॉक्टर है। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसा बनना है जो हम सभी को बाबा के हवाले करके और उनों का कल्याण करावे, परमात्मा सर्जन के हवाले करके। हम नष्टो मोहा हो जाएगी और उनों का कल्याण हो जाएगा। फिर तीसरा है, सारी पुरानी दुनिया के पदार्थों से नष्टो मोहा। अब देखो, हमें घर गृहस्थ में रहना है, शरीर के साथ रहना है, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, फ्रिज चाहिए, अच्छे अच्छे पर्दे चाहिए, सोफा सेट चाहिए, सब कुछ चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, सब चाहिए नहीं भाई? भले सब रहे परंतु ये विनाशी चीज है, मैं उसका गुलाम नहीं हूं। इन सब चीजों के आधार पर मेरी जिंदगी नहीं है, मैं मालिक हूं। उसमें से कुछ भी नहीं हो तो भी मैं निराधार हूं। निराधार अवस्था किसको कहते हैं? देखो, ये हॉल जब बन रहा था तो ये छत डालने के लिए बीच में क्या डाले थे? वल्लियां डाली थी, खंभे डाले थे। हाँ, अगर वो खंभे आज भी होते तो हम सुख ले सकते? सुख ले सकते? हाँ, छत पक्की हो गई, खंभे निकाल दिए, तब हम ओपननेस का सुख ले सकते हैं, खुले हॉल का सुख ले सकते हैं। निराधार अवस्था, ये निराधार छत हो गई, निराधार अवस्था, कोई भी आधार पर जिंदगी नहीं, तो सब विनाशी पदार्थों से नष्टो मोहा। और चौथा, पुराने संस्कारों से वैराग्य, पुराने संस्कारों से। अब बहुत संस्कार पुराने तो ऐसे हैं जिसके पर कभी सोचा भी नहीं होगा, अहम वहम भय ईर्ष्या आलस्य बहानाबाजी, ये एकदम सूक्ष्म संस्कार है जो बुद्धि को पकड़ के रखता है। वैसे हम बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं लेकिन अंदर में जो दीमक लगा हुआ है, कहीं अच्छे अच्छे लोग आके कहते, बहन जी किसी ने मेरे पर कुछ किया हुआ लगता है। क्यों भाई? अरे मैं कितनी मेहनत करता हूं, मेरा बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत अच्छा चलता था लेकिन किसी ने ईर्ष्यावश कुछ किया है। क्या आया? वहम। अब वहम की कोई दवाई है क्या? कोई का तबीयत ठीक नहीं था, बहन जी चौकस मुझे कुछ कर, कोई कुछ कर रहा है। अरे क्यों भाई, क्या कर रहा? नहीं, मेरी बीमारी कितनी लंबी चली आ रही है, मैंने कितनी दवाई की, कितने डॉक्टर बदले। वहम। अगर कोई दो व्यक्ति दूर खड़ी है, बातें कर रही आपस में, भूल से समझो वो मेरी ओर देख लेते हैं, भूल से, ऐसे ही। अगर मेरा नेचर वहम का होगा तो मैं क्या सोचूंगी? देखा नहीं, ये मेरी बात कर रहे हैं, मुझे मालूम है, अब पता नहीं उनको मेरे लिए क्या है। अरे भाई वहम, तो ये वहम, शंका, बहानाबाजी, ये पुराने संस्कारों को एकदम खत्म करने का, जला देने का, तभी वैराग्य आ सकता है, नहीं तो बुद्धि घड़ी घड़ी भागेंगी। तो हमें न स्मशानी वैराग्य करना है और न भागेड़ु बनना है, पर हमें सच्चे अर्थ में वैराग्य की भाषा को समझते हुए वैराग्य वृत्ति को धारण करना है, जिससे हम योग की पूरी पराकाष्ठा को अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया? अब हम बेहद के वैरागी बन के रहेंगे न? जो कहते हैं, हम अभी सच्चे दिल से संकल्प कर रहे हैं कि इस बेहद के वैराग्य की धारणा को अपना जीवन मंत्र बनाएंगे, वो हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, बाबा हमारे साथ हैं और बाबा इस बेहद के वैराग्य वृत्ति का रिजल्ट हमें संपूर्ण कर्मातीत बनाएगा, संपूर्ण पावन सतु प्रधान बनाएगा। चलिए, किसी को कुछ पूछना है कि खुश, संतुष्ट? संतुष्ट, ठीक है। हाँ बोलो भैया, आगे आके पूछो।
किस बात में?
घर वालों को संतुष्ट करने के बाद ही सेंटर में रहना चाहिए। आप अपने जीवन से, अपनी धारणाओं से उन्हों को ऐसा संतुष्ट करो, फिर वो अपने आप आपको संतुष्ट करेंगे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा लड़का है, आज्ञाकारी है, विनम्र है, जाने दो, वो अपने आप कहेंगे। साकार बाबा ने हमको घर में रखा था, वेदांती बहन हमारी बड़ी बहन है, तो वो तो समर्पण हो गई। तो मैंने बाबा को पूछा आपकी तरह, बाबा ने कहा बच्ची तुम्हें घर वाले सबको सेटिस्फाई करके, सबकी सेवा करके फिर तुम्हें आना है। तो मुझे 1.5 साल लेट आने को मिला, पर बड़े प्यार से मेरे को छुट्टी दी। तो घर वालों को सेटिस्फाई करके उनकी दुआओं के साथ चलना है आगे।